परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर अपने जीवन में आप आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन को सुनने एवं सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करते हैं और हम तक अपने आशीषों को पत्र के माध्यम से पहुंचाते हैं। कृपया इसी तरह पत्र लिखते रहें और प्रभु के आशीषों को हमारे साथ बांटते रहें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि हम पर कोई दोष लगा नहीं सकता क्योंकि हम मसीह में हैं और हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग करने वाला भी नहीं है और सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। प्रभु ने हमें उद्धार दिलाया है तो वह हमें घर तक लेकर चलेगा, अन्यथा हमें खोज कर लाएगा। जी हाँ, यही बात हमने पिछले अध्ययन में देखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय और 1 से 5 पद तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए जिसके द्वारा आप हमसे प्रेम करते हैं। आज जब हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, अपने जीवन में सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारी सहायता करें, हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने नियंत्रण में ले लें। पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करें ताकि जो वचन आज हम सीखते हैं उनके जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, चिंतित हैं, मानसिक तनाव में हैं, आर्थिक तनाव में हैं, व्यक्तिगत चिंताओं में फंसे हुए हैं। आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें ताकि आज आपके वचन के द्वारा वे अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकें। हाँ प्रभु, आप ऐसा करेंगे क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, इसराइल की व्याख्या, इसराइल की पहचान, इसराइल का चयन, परमेश्वर का ईश्वरीय प्रयोजन, अन्य जातियों का चुनाव धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी का स्वरूप है। अब हम इसी पत्री के दूसरे मुख्य भाग में आते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 1-8 सैद्धांतिक है और अध्याय 9-11 ईश्वरीय व्यवस्था संबंधित है। अध्याय 12-16 कर्तव्य संबंधित है। मित्रों, प्रथम 8 अध्यायों में मसीह जन के विश्वास पर बल दिया गया है और अध्याय 9-12 में आशा और 12-16 में प्रेम पर बल दिया गया है। रोमियो की पत्री के अवलोकन का एक और परिदृश्य है। पहला भाग उद्धार से संबंधित है, दूसरा भाग पृथकीकरण से और अंतिम भाग सेवा से संबंधित है। पौलुस ने प्रथम 8 अध्यायों में उद्धार को मुख्य रूप से व्यक्त किया है क्योंकि संपूर्ण मानव जाति भ्रष्ट है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित अर्थात वंचित हैं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए उद्धार उपलब्ध कराया है, परंतु एक ही शर्त पर कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। अब पौलुस दूसरे मुख्य भाग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ विचारकों ने इस भाग को परिशिष्ट कहकर अलग करने का प्रयास किया है, अन्यों ने इसके महत्व को कम किया और अप्रासंगिक कहते हुए इसे अवतरण गध कहा है। तथापि यह प्रासंगिक ही नहीं, पत्री के तर्क और शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, अध्याय 8 और 12 को दो माल डब्बों के नाई जोड़ा जा सकता है, परंतु रोमियो की पत्री को लिखते समय पौलुस मालगाड़ी नहीं बना रहा था। यह पत्री मालगाड़ी नहीं, एक बहता हुआ सोता है। अध्याय 9-11 का विलग किया जाना नदी के मध्य भाग के विलग किए जाने के समान है जो विनाश ढा देगा। ग्रिफिथ थॉमस ने लिखा अध्याय 9-10-11 इस पत्री के अभिन्न अंग हैं और इसकी अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए अति आवश्यक है। इस गद के महत्व को दर्शाने वाली कुछ महान विशेषताएं हैं, मनोवैज्ञानिक कारक, ऐतिहासिक कारक और सैद्धांतिक कारक। मेरे प्रियो, मनोवैज्ञानिक कारक प्रेरित पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित है। यह कहना सही नहीं कि रोमियो की पत्री पौलुस के मस्तिष्क से और गलातियों की पत्री उसके हृदय से लिखी गई है। अध्याय 9 के आरंभ में पौलुस अपना हृदय खोलकर रख देता है, वरन इस संपूर्ण भाग में। अध्याय 8 और अध्याय 9 में एक वृहद दूरी है। अध्याय 8 परमेश्वर के प्रेम से अलग न होने के महान आनंद और विजय के स्तर पर अंत होता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। अध्याय निराशा और दुख में निम्न स्तर पर खुलता है और स्पष्ट है कि विषय में परिवर्तन के कारण प्रेरित के मन में यह दुख उत्पन्न हुआ। अभिलेख को पढ़ते समय हम यह देखेंगे। ऐतिहासिक कारक पौलुस के युग के विशेष परिस्थिति और समस्या पर केंद्रित है। आधुनिक टीकाकारों ने इस कारक पर ध्यान नहीं दिया है और आज की कलीसिया अधिकतर अन्य जाति कलीसिया है। यहूदी पृष्ठभूमि पूरी तरह भुलाई जा चुकी है। विश्वासी कल्पना करते हैं कि पुराने नियम की प्रतिज्ञाएं कलीसिया में पूरी हो गई है। यह मान लिया गया है कि पुराने नियम की भविष्यवाणियां की उत्तराधिकारी कलीसिया है और परमेश्वर इसराइल से निपट चुका है। मेरे प्रियो, कुछ वर्ष पूर्व एक मसीही संस्था ने यरूशलेम में भविष्यवाणी के संबंध में एक सभा का आयोजन किया था। यह बड़ी विचित्र बात हुई कि ऐसी महत्वपूर्ण सभा चुने हुओं में तूफान स्वरूप संपन्न हुई। सभा के संवाददाताओं की टिप्पणी थी कि यरूशलेम नगर को इस सभा की जानकारी भी नहीं थी। इस सभा की तुलना प्रेरितों के काम 15 अध्याय की यरूशलेम की सभा से करना एक रोचक बात है। उस समय संपूर्ण यरूशलेम में सनसनी फैल गई थी। इस सभा में उपस्थित जनों में से आधों के विचार में परमेश्वर की भावी योजना में इसराइल राष्ट्र का कोई स्थान नहीं था। उनके विचार में परमेश्वर का कार्य अब इसराइल के साथ समाप्त हो गया था। मेरे मित्रों, यदि यह बात सच है तो उन्होंने यरूशलेम में इस भविष्यवाणी की सभा का आयोजन क्यों किया था? वे किसी जंगल में इसका आयोजन कर सकते थे। इसराइल के साथ परमेश्वर का उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है, जैसा हम देखेंगे। स्टेफलर का विचार है, मसीही व्याख्याओं में अव्यक्त कल्पना यह है कि यहूदियों के दिन पूरे हो चुके हैं, कि एक चयनित मसीह में विश्वास पर निर्मित कलीसिया व्यवस्था और भविष्यवाणियों की कामना थी, और सब यहूदियों का यह कर्तव्य था कि अपनी विशिष्टता त्याग कर कलीसिया में आ जाएं। यहूदियों ने पौलुस के लिए भी यही सोचा था। यह भूल जाना विचित्र बात है कि यरूशलेम और यहूदा की मूल कलीसिया में एक भी अन्य जाति विश्वासी नहीं था, एक को भी प्रवेश नहीं दिया गया था, और उससे दसियों हजार सदस्यों की कलीसिया का प्रत्येक सदस्य व्यवस्था की जलन रखता था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 20 पद में हम इसे देखते हैं। उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परंतु पुराने नियम की परंपराओं और आशा का त्याग नहीं किया। मसीही विश्वास ने यहूदी की अपेक्षा अन्य जातीय दृष्टिकोण से इसकी लगातार व्याख्या के निमित्त कम कष्ट नहीं उठाया था। यरूशलेम को ही कलीसिया पर्याप्त ऐतिहासिक परिदृश्य प्रदान करती है, अंताकिया, एफिसोस, रोम की कलीसिया नहीं। मेरे मित्रों, यह मानना कि परमेश्वर को अब इसराइल से प्रयोजन नहीं रहा अत्यधिक संकीर्ण मानसिकता है। रोमियों की पत्री 11 अध्याय उसके एक पद में पौलुस एक प्रश्न करता है, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? उसका उत्तर तीव्र नकारात्मक है, कदापि नहीं। वह कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं इसराइल से की थी वे पूरी होंगी। वह यह भी कहेगा कि परमेश्वर ने कलीसिया से भी प्रतिज्ञा की है, और आज वह चुने हुओं को बुला रहा है, यहूदी और अन्य जाति दोनों को, कि कलीसिया का निर्माण करे। यही यरूशलेम सभा में प्रेरितों के काम 15 अध्याय का निष्कर्ष था। यह भविष्यवाणी की व्याख्या का सार है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 13 से 18 पद में हम पढ़ते हैं, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की, उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लिए। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। और यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। जी हाँ, याकूब स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जाति बना रहा है। जब वह इस काम को पूरा कर लेगा तब वह कलीसिया को पृथ्वी पर से उठा लेगा अर्थात हटा लेगा, और फिर इसराइल की सुधि लेगा। परंतु उस समय भी वह अन्य जातियों से विमुख नहीं होगा। लिखा है कि उस समय सब उद्धार प्राप्त अन्य जातियां इसराइल के साथ राज्य में प्रवेश करेंगी और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। यह ऐतिहासिक कारक अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं सैद्धांतिक कारक, सही ईश्वरीय व्यवस्था संबंधित व्याख्या और परमेश्वर के दिव्य उद्देश्य से संबंधित है। पहले 8 अध्यायों में पौलुस ने पाप, उद्धार, पवित्रीकरण के महान विषयों को अनुग्रह से महिमा तक व्यक्त किया है। इस युग में राष्ट्रीयता, अनुष्ठान, परंपराओं का परमेश्वर के समक्ष कोई मान नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से केवल विश्वास की आशा करता है। मनुष्य की कोई भी जाति हो या कैसी भी दशा में हो, वह दया पात्र बन सकता है। मेरे मित्रों, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नियम में जो भी अंतर थे वे सब मिट गए हैं। पौलुस प्रश्न पूछते हुए इसका उत्तर देता है, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके एक पद में, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? इसका उत्तर है, कदापि नहीं। पौलुस ने इस पत्र के आरंभ में कहा है, एक अध्याय उसके 16 पद में, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए। मेरे विचार में यह काल क्रम के अनुसार पहले यहूदियों को दिया गया था। अब हम अध्याय 9 से 11 में देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यह संभवतः मसीही शिक्षाओं से संबंधित नहीं होंगे, परंतु बाइबल की भविष्यवाणी से संबंधित होंगे। इससे प्रकट है कि परमेश्वर ने इसराइल का त्याग नहीं किया है। आइए अब हम 9 अध्याय का आरंभ करें और आप इसमें देखेंगे कि इसराइल के साथ परमेश्वर के पूर्व के व्यवहार हैं। अध्याय 10 में इसराइल के साथ परमेश्वर का वर्तमान का व्यवहार है और अध्याय 11 में इसराइल के साथ परमेश्वर का भावी व्यवहार है। इसराइल के साथ परमेश्वर का व्यवहार पूर्व समय में उनके विशिष्ट गुणों या उच्च प्रयासों के कारण नहीं था। इसके विपरीत परमेश्वर के सब काम उसकी अपनी दिव्य इच्छा में थी। वह इसराइल वरन सब के साथ, आपके और मेरे साथ दया के द्वारा कार्य करता है। मार्टिन लूथर का कथन है, इस अध्याय की उपयुक्त प्रस्तावना है, जिसने दुख, क्रूस और मृत्यु की वेदना को नहीं जाना, अनुग्रह के चुनाव को चोट और परमेश्वर के प्रति आंतरिक वैर के बिना समझ नहीं सकता। अतः आप सावधान रहें कि आप स्तनपान की अवस्था में मदिरा पान ना करें। यह एक विकट औषधि है जिसे हम यहां देखेंगे। आइए अब हम देखें इसराइल की परिभाषा। रोमियो के पत्र 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूं कि झूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मैं इस पद का अर्थानुवाद करके सुनाता हूं। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहता, पवित्र आत्मा में मेरा विवेक मेरे साथ गवाही देता है। जी हाँ, यह पौलुस की अनौपचारिक प्रस्तावना है। आपको स्मरण रखना है कि जिस समय पौलुस यह लिख रहा था, उस समय उस पर दोष लगाया जा रहा था कि वह अपने ही लोगों का वैरी है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को न मार डालें, तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार है। अब पौलुस अपनी मनपसंद अभिव्यक्ति काम में लेता है। मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रोमियो के पत्र 9 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं कि मुझे बड़ा शोक और मेरा मन सदा दुखता रहता है। हमारे लिए इस महान प्रेरित के मन में अपने लोगों के लिए उपस्थित वेदना को पूरी तरह समझना असंभव सा है। उनकी लगातार सताव में भी सहनशीलता दिखाना इसका एक चिन्ह है। मित्रों, वह जानता था कि वे मसीह और मसीह विश्वास के प्रति कैसी भावना रखते थे, क्योंकि वह स्वयं भी ऐसा ही था। वह एक फरीसी था, एक अगुआ था, और वह चाहता था कि वे भी उसकी नाई मसीह को ग्रहण करें। हम रोमियो के पत्र 9 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। मित्रों, मैं आपके लिए इसका एक और अनुवाद प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैं चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था, कि अपने भाइयों के लिए स्वयं मसीह से शापित हो जाता, विनाश को समर्पित होता, शरीर के भाव से मेरे कुटुंबियों के लिए। ध्यान दीजिए, यहां अनुवाद में समस्या है। यदि आपको मुक्त अनुवाद की आवश्यकता हो तो वह ऐसा होगा, क्योंकि मैं एक समय अपने भाइयों, शरीर के अनुसार अपने कुटुंबियों की नाए मसीह द्वारा शापित था। सच कहूं तो मैं स्वयं पौलुस की इस बात को नहीं समझता हूं। यदि बाइबल का अनुवाद उचित है तो पौलुस ने अध्याय 8 में कहा है कि मसीह यीशु में अवस्थित परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। अब यहां पौलुस कहता है, मैं यहां तक चाहता था स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। यह निरर्थक इच्छा है। आप शापित हो ही नहीं सकते। आपने स्वयं अभी हमसे यह कहा है, अतः यह एक अलंकारिक भावभंगिमा है। ऐसा कथन आपके मन की सच्चाई नहीं है। तथापि प्रेरित पौलुस सत्यवादी था। वह अलंकारिक भाग भंगिमा का उपयोग नहीं करता था। अतः मेरे विचार में उसके कहने का अभिप्राय था, एक समय वह भी था जब मैं अपने भाइयों की नाई मसीह द्वारा शापित था। मैं जानता हूं कि मुझ पर शाप नहीं है, अतः मैं चाहता हूं कि वे भी मसीह को ग्रहण करके मेरे तुल्य हो जाएं। जे ए वेंगल ने कहा, मूसा और पौलुस में उपस्थित प्रेम को नापना आसान नहीं है। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसके 31 और 32 पद में मूसा ने भी ऐसी ही मनोवेदना को प्रकट की थी। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, वे इसराइली हैं और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, आमीन। मेरे मित्रों, पौलुस पूछता है, क्या वे इसराइली हैं? इसराइलियों के पहचान के 8 लक्षण थे, आइए हम देखें। पहला, चुनाव। उनका चुनाव राष्ट्रीय था और राष्ट्रीय एकता का था, व्यक्तिगत नहीं था। एकमात्र राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा वह इसराइल राष्ट्र था। निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय के 22 पद में, और तो फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इसराइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुमसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। तब हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहां तो परमेश्वर सच कह रहा है या नहीं कह रहा है? यदि आप इसे सच नहीं मानते तो मैं नहीं समझ पाता कि आप योहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में क्यों विश्वास करेंगे। दोनों प्रतिज्ञाएं एक ही पुस्तक में है। मैं योहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में विश्वास करता हूं, और मैं व्यवस्था विवरण के पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 पद में भी विश्वास करता हूं। होशे नबी के पुस्तक 11 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने कहा, जब इसराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परमेश्वर एक राष्ट्र कह रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। इसराइल राष्ट्र उसका पुत्र है, उसने अन्य किसी जाति से यह नहीं कहा। लेपालकपन इसराइल का ही है। और दूसरी बात है महिमा। उनके मध्य मिलाप वाले तंबू में और उत्तर काल के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय के 35 पद में लिखा है, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इसराइल के वंशज ही एकमात्र मनुष्य थे जिन्होंने परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति देखी थी। आज परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट नहीं होती है, हमें इस तथ्य को स्मरण रखना है। मेरे प्रियो, वर्षों पूर्व एक प्रचारक ने तंबू लगाया और वह कहता था कि उसके तंबू के ऊपर और भीतर स्वर्गदूत चलते दिखाई देते हैं। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, और वास्तव में थी भी। वह अत्यधिक मद्यपान के कारण मर गया। मेरे विचार में 2 या 3 घूंट लगाने के बाद आपको स्वर्गदूत चलते हुए दिखाई देते हैं, और इसी प्रकार उसने भी देखे थे। परंतु इसराइल ने ही एकमात्र राष्ट्र था जो परमेश्वर की उपस्थिति को देख पाता था। कलीसिया में ऐसा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा प्रत्येक विश्वासी में अंतर्वास करता है कि जीवित मसीह को जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है वास्तविक बनाए। और तीसरी बात हम देखते हैं, वाचा। परमेश्वर ने इसराइल के साथ वाचाएं बांधी है जिन्हें वह निभाना चाहता है। कुछ तो वह पूरी कर चुका है। उसने कहा कि वह उन्हें सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। उसने दाऊद से भी प्रतिज्ञा की थी जो मसीह यीशु में पूरी हुई। परमेश्वर ने इसराइल, अब्राहम, दाऊद और राष्ट्र के साथ अनेक प्रतिज्ञाएं की थी जो उसने अन्य जातियों से नहीं की थी। इसराइल के लिए यह वाचा है। और चौथी बात है व्यवस्था। इसराइल राष्ट्र को मूसा की व्यवस्था दी गई थी। निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय के 5 पद में लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तब निर्गमन 31 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर ने कहा, तू इसराइलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि परमेश्वर हमारा पवित्र करने हारा है। मित्रों, आपने देखा कि यह इसराइल राष्ट्र के लिए है। मुझसे पूछा गया, आप सप्त के दिन का पालन क्यों नहीं करते हैं? मैं इसराइल राष्ट्र का सदस्य नहीं हूँ, इसलिए मैं विश्राम दिन का पालन नहीं करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा, क्या परमेश्वर ने सप्त का दिन बदल दिया है? परमेश्वर ने सप्त का दिन तो नहीं बदला, परंतु उसने निश्चय ही हमें बदल दिया है। हम मसीह में हैं और यह एक नया संबंध है। मूसा की व्यवस्था उसने इसराइल को दी थी। मित्रों, अब हम देखते हैं पांचवी बात, परमेश्वर की सेवा। यह मिलाप वाले तंबू और मंदिर से संबंधित है। उन्हें याचकों का राज्य होना था। निर्गमन के पुस्तक 19 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और तुम मेरे दृष्टि में याचकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जी हाँ, इसराइल राष्ट्र ने परमेश्वर को निराश किया, परंतु परमेश्वर ने अपना उद्देश्य नहीं त्यागा कि उन्हें याजक होना है। परमेश्वर ने लेवियों के गोत्रों को चुना, उन्हें मिलाप वाले तंबू और आगे चलकर मंदिर की सेवा और रख रखाव का उत्तरदायित्व सौंपा। भविष्य में सहस्त्र वर्षीय राज्य में इसराइल राष्ट्र फिर से पृथ्वी पर परमेश्वर के याजक होंगे। जी हाँ, ये 6 बातें हैं जिसे परमेश्वर बताना चाहता था। और भी 2 बातें हैं जिसे हम अगले अध्ययन में देखेंगे। इस समय हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है, और निश्चय इस बात को जाना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार और आनंद देना चाहते हैं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे एवं सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। कुछ न जू